نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آگے دیکھیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا یہ بڑی اہم آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لے آئیں کون ایمان لے آئیں کہا تو ان کو جا رہا ہے یہود و نصارہ کو کہ یہ یہودی اگر ایمان لے آتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ بس منہ سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے ہمارا ہوتا ہے مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے کس کے جیسا ایمان ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی کون سا ایمان ریکوائرڈ ہے آخرت میں کامیابی کے لیے کون سا ایمان کرائٹیریا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا ایمان لائے تم ساتھ اس کے ساتھ کس کے اس کتاب کے اس قرآن کے ایسا ایمان چاہیے تو فقد اهتدوا تو بلا شبہ وہ ہدایت پا گئے ایسا ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہیں آیت 135 دیکھیں نکالیں آیت 135 انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تب تم ہدایت یافتہ ہو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک یہ ان کی اپنی منہ کی باتیں ہیں اللہ کے نزدیک کیا چاہیے ایمان اور وہ بھی ایک خاص درجے کا ایمان ایسے نہیں کہ اپنے منہ کی باتیں بولی میں عام ایمان لے آئے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں ایسا ایمان چاہیے جیسے تم ایمان لائے تم سے مراد کون ہے آمن تم کس کو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بنایا ہے کس کو مثال بنایا ہے کس کا ایمان ایسا ایمان چاہیے جیسے ایک چیز دکھائی جاتی نا ایسی چیز چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا مجھے کیسا ایمان چاہیے یہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور صحابہ کرام ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو ایمان لائے ان کے لیے ان کو کرائٹیریا بنا دیا کہ اللہ کے نزدیک جو ایمان ایکسیپٹڈ ہوگا نا وہ یہ ایمان ہے کہ وہ لوگ ایسا ایمان لائے تھے جس میں کوئی کمی زیادتی نہیں تھی جس میں خلوص تھا جس میں نفاق نہیں تھا تمام فرشتوں پہ انبیاء پہ اللہ کی ذات پہ اس کی صفات پہ تمام تعلیمات پہ اللہ کے تمام حکموں پہ ہر چیز پہ وہ ایمان ایسے لے کر آئے جیسے ان کو کہا گیا ویسا ہی ایمان لے کر آئے کوئی کمی بیشی نہیں تھی یہ وہ ایمان لائے تھے کہ سبحان اللہ جب ان یہودیوں کو اور لوگوں کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا آیت نمبر 13 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ تو کہتے ہیں ایسا ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئیں اس وقت میں بھی وہ ان کو بیوقوف لگتے تھے آج تو بالکل ہی لوگوں کو پاگل لگتے ہیں دیوانے لگتے ہیں بھٹکے ہوئے لگتے ہیں ویسا ایمان اگر کسی کا ہو اول تو نظر ہی نہیں آتا کیسا تھا صحابہ اکرام کا ایمان کچھ پتہ ہے آپ کو اللہ اکبر اللہ ہمیں ایسا ایمان دیتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے ان کا ایمان نہیں ہلتا تھا ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے تب تم ہدایت یافتہ ہو تو ہم کون سے خیالات میں ہیں ہم کون سے خیالات میں ہیں ایسا ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم جتنا مرضی کہہ دیں ہم بڑے ایمان والے ہم یہ ہم وہ نہیں ہدایت یافتہ پھر بھی نہیں ہے हिदायत पे होने के लिए तो ऐसा ईमान लाना जरूरी है। फिर बताएं हमारी हिदायत का क्या हाल है। इनका ईमान प्योर था, उसमें कोई खोट नहीं था। इनका ईमान ऐसा था कि दीन से ज्यादा इनको कोई चीज प्यारी नहीं थी, अपने ईमान से ज्यादा इनको कुछ प्यारा नहीं था, और इनको दुनिया की जिंदगी से ज्यादा आखरत की मोहब्बत थी। इनका ईमान वो था जिसमें कौलो फेल का तजाद नहीं था कि कहा कुछ और किया कुछ। इनका ईमान वो था जो समय ना वाताना वाला था। इनका ईमान वो नहीं था कि जो सुन लिया अब मानना हमने थोड़ी है। इनका ईमान वो है कि हजरत बिलाल को देखें कि तपती दोपहर में जब जमीन बिल्कुल रेत ऐसी हो जाती थी जैसे कि कोयला है, तो उस वक्त इनको उस जमीन पे लिटा के और घसीटा जाता था और ऊपर पत्थर भी रख दिए जाते थे, फिर भी एक ही लफ्ज इनकी जुबान पे होता था, आहद आहद आहद। उमैया इनसे कहता था, खुदा की कसम तेरे साथ यही सलूक करता रहूंगा, तू चाहे मर जाए या फिर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर कर और लात और उज्जा की इबादत कर। आखिरकार तो वो सिर्फ ये कहने लगा कि एक दफा हमारे खुदाओं का नाम ले ले मैं तुझे छोड़ दूंगा, एक दफा नाम ले ले, क्योंकि वो उनको टॉर्चर कर करके भी थक गए थे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे थे। हजरत उम्मे सलेमा का ईमान देखते हैं, फरमाती थी कि मैं नहीं जानती कि इस्लाम लाने के बाद किसी घराने पे भी इतनी मुसीबत पहुंची हो जितनी अबू सलेमा के घराने को पहुंची। ये अबू सलेमा की बीवी है ना। आप फरमाती थी कि जब अबू सलेमा ने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा किया तो मुझे ऊंट पे बिठाया, मेरे बेटे सलेमा को मेरी गोद में दे दिया। फिर वो ऊंटनी को हांकते हुए लेके जा रहे थे तो जब बनी मुगीरा यानी जो मेरा कबीला था उनके लोगों ने देखा तो ऊंट की नुकेल उनके हाथ से छीन ली और मुझको उनसे ले लिया। अबू सलेमा के कबीला बनू अब्द असद ने ये देख के कहा कि जब तुमने अपने कबीले की औरत को ले लिया है हमारे आदमी से तो हम भी अपने बेटे यानी सलेमा को इसके पास नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे बेटे सलेमा को दोनों तरफ से लोगों ने खींचना शुरू कर दिया, यहां तक कि बच्चे का हाथ उतर गया और उसको बनी अब्द असद के लोग यानी इनके जो शोहर है उनके कबीले के लोग ले गए और मुझको बनी मुगीरा यानी जो इनका अपना कबीला था इनके लोगों के पास छोड़ दिया गया और मेरे शोहर अबू सलेमा मदीना चले गए। मुझ में और मेरे बेटे और मेरे शोहर में जुदाई होगी, एक फैमिली है और देखें कोई कहीं है और कोई कहीं। कहती मैं रोजाना सुबह को निकलती थी और मैदान में बैठ के शाम तक रोती रहती थी, एक साल तक ऐसा ही होता रहा। वो सुबह जाती ही सुबह से जाके शाम तक वहां पे बैठ के रोती रहती। अब सोचें कि इन लोगों ने कुर्बानियां दी, दीन नहीं छोड़ा। हम दीन की तरफ आने की वजह से कोई जरा सी भी कांटा भी चुभ जाता है ना तो इतने इतने आंसू रोते हैं कि हाय हाय हम दीन की तरफ आए थे ना तो हमें ये तकलीफ पहुंच गई। बदर में देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को जिहाद की दावत दी और निकलने को कहा तो हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो अपनी वालदा के पास आए। उनकी वालदा बहुत बूढ़ी हो गई थी, उनके खामन पहले ही फौत हो चुके थे, बुढ़ापे की वजह से उनका समझ ले वाहिद सहारा हारिसा थे और जिनसे इतनी उनको मोहब्बत थी। वैसे तो सारी माएं अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती हैं लेकिन इकलौती औलाद की वजह से और फिर शोहर भी नहीं है तो फिर इतनी उनको मोहब्बत थी कि लोग उनकी मोहब्बत की अपने बेटे से जो मोहब्बत थी उसकी मिसालें देते थे और बेटे की जरा सी तकलीफ पे तड़प उठती थी। सर्दी के मौसम में जरा सी सर्दी में परेशान हो जाती है कहीं मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए और गर्मी में इससे परेशान हो जाती है कि कहीं मेरे बेटे को लू ना लग जाए। आप इससे अंदाजा कीजिए कि कितनी ज्यादा उनको मोहब्बत होगी अपने बेटे से। और ये वो दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की दावत दी कि बेटा अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ और देखते हुए कहता है कि मुझे जाने की इजाजत दें। तो तो माँ कहती मेरी तो आरजू है कि मैं तुम्हारी शादी कर लूँ और तुम्हारी औलाद हो, फिर मैं उसे जी बहलाऊँ। तो मेरे दिल के अंदर तो ये अरमान है, बेटा देहात पे जाने की ज्यादा चाह रहा है। बेटा कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो माँ कहने लगी कि बेटे मेरे से तेरी जुदाई जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, तू मेरे पास ही रह जा। इधर हारसा अपनी वालदा से बार बार इजाजत के लिए इसरार कर रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं, सर चूम रहे हैं और कह रहे हैं अम्मा जान आप खुशी से इजाजत दे दें। जब बेटे ने बहुत ही इसरार किया, बहुत हद से बड़ा इसरार, तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटे ठीक है तुम जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, लेकिन सुन लो तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे चैन नहीं आएगा। फिर उठी, अपने बेटे को अपने हाथ से कपड़े पहनाए, तलवार उसके गले में लटकाई, फिर बेटे की पेशानी पे बोसा दिया और उनको रवाना कर दिया। जब मुसलमान बदर के मकाम पे पहुंचे ना, तो वहां पे कुएं के पास पड़ाव डाला, और कुरैश ने भी अपने लाओ लश्कर के साथ वहां पे पड़ाव डाला हुआ था। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अभी सफे बांध रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब्बाब बिन मुनज़र के मशवरे पे आगे बढ़ के ये कहा कि ये पानी के कुएं पे कब्जा कर लिया जाए, और उसकी हिफाजत के लिए एक अंसारी को मुकर्रर किया कि कोई दुश्मन इसमें जहर ना मिला दे। तो आपको पता है कि बदर के वहां पे कुएं के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, तो और उनको कहा गया था कि कोई भी दुश्मन का आदमी ना इस कुएं के पास ना आए, और इसमें यहाँ पे जिन सहाबी को मुकर्रर किया गया था वो अंसारी एक सहाबी थे जो बहुत तीर चलाने में बहुत महारत रखते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारसा को बड़ी प्यास महसूस हुई, उन्होंने कुएं का रुख किया, वहां पहुंच के कुएं से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाना चाहते थे कि वो जो हिफाजत में खड़े हुए थे सहाबी, उन्होंने समझा ये दुश्मन का आदमी या और ये शायद कुएं में जहर मिलाने के लिए आया। कहने लगे नाऊजु बिल्ला इस्लाम का, ये दुश्मन हमारे कुएं को खराब करने के लिए आया। उन्होंने अपने तीर को कमान में रखा और तीर चला दिया, तीर सीधा उनके हलक में जाके लग गया। तो हारसा रजी अल्लाह ताला उन्होंने चीख मारी और जमीन पे गिर पड़े। मुसलमानों ने इनको दुश्मन का आदमी समझा, किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, और हारसा ने तीर निकालने की कोशिश की मगर उनकी मौत आ चुकी थी, शारक कट चुकी थी, खून का फवारा बह रहा था, और इसी हालत में वो अपने रब से जा मिले। जब इनकी मौत वाकई हुई तो जो कुएं पे जो मुहाफिज सहाबी थे वो आगे बढ़े, अपने तीर का शिकार एक मुसलमान को देख के फिर वो बहुत परेशान हुए कि ये क्या हुआ, मैंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, मैं तो इनको दुश्मन का आदमी समझा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके खबर दी, आपने उन अंसारी सहाबी को माफ कर दिया कि इनका कोई कसूर नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने देखे मुसलमानों को फतह दी, मुसलमान खुशी खुशी वापस मदीना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हजरत बिलाल को और हजरत जैद को फतह की खुशखबरी देके मदीना भिजवा दिया था। जब मुसलमान वापस आए तो अहले मदीना ने मुजाहिदीन का बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया, औरतें बच्चे बूढ़ी औरतें अपने खामदों बापों बेटों के इंतजार में थी। तो जो रिश्तेदार थे वो इतने वालेहाना तौर पे अपने अजीजों का इस्तकबाल कर रहे थे, इन्हीं इस्तकबाल करने वालों में उम्मे हारसा भी थी। तो मुसलमान मुजाहिद मदीना में जब दाखिल हुए, बच्चे आगे बढ़ के अपने बापों को सलाम कर रहे हैं, उनसे हाल अहवाल कर रहे हैं, तो उम्मे हारसा एक तरफ इंतजार में खड़ी हैं और कि कब उनका बेटा आए और उसको सीने से लगाएं। तो काफले आते रहे और उनके पास से गुजरते रहे, लेकिन इनमें उनको हारसा नजर नहीं आया। तो दिल में तरह तरह के वसवास के खदशात थे। आखिर को एक सहाबी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई और उन्होंने पूछा कि तुम हारसा को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ, मगर तुम्हारा हारसा से क्या ताल्लुक? कहने लगी मैं उसकी माँ हूँ। सहाबी ने कहा तो फिर अपने बेटे पे सब्र करो, तुम्हारा बेटा कत्ल हो गया। तो उम्मे हारसा ने जब ये खबर सुनी और शहीद का मकाम और मर्तबा याद आया और कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं शहीद की माँ हूँ, मेरा बेटा है जन्नती है, तो कि मेरा बेटा मेरी सिफारिश करेगा, उसको इतना बड़ा मकाम मिला, तो भी इख्तियार कहने लगी मेरा बेटा शहीद है मगर मैं तो उसको शहीद नहीं समझता। सहाबी ने जवाब दिया। पूछा क्यों, कहने लगे कि वो तो उसको तो काफिरों ने कत्ल नहीं किया, उसको तो मुसलमान के साथ का तीर लगा और वो कत्ल हुए और जंग से पहले ही कत्ल हो गए। तो इस बूढ़ी माँ ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ का रुख किया कि वो कहाँ है। साहबी ने कहा वो देखो अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। वो दौड़ती भी आगे बढ़ी, आंखों से आंसू जा रही हैं और गम का पहाड़ इन पे टूटा कि जवान इकलौता बेटा शहीद हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक खातून आ रही है, रुक गए। वो पास आई, पूछा कौन है, कहने लगी उम्मे हारसा। फरमाया उम्मे हारसा क्या चाहती हो। अर्ज किया अल्लाह के रसूल आपको पता है कि मुझे अपने बेटे हारसा से कितनी मोहब्बत थी, सारा मदीना मेरी मोहब्बत से खूब वाकिफ है, मुझे मालूम है मेरा बेटा कत्ल हो गया। अल्लाह के रसूल मुझे बताए कत्ल के बाद हारसा कहाँ है, मेरा लखते जिगर कहाँ है। अगर तो जन्नत में है तो मैं सबर और शुक्र करूंगी, और अगर वो जन्नत में नहीं है तो फिर मुझे इजाजत दे, मैं खूब रोऊं, इतना रोऊं कि इससे पहले इसकी कभी मिसाल ना हो, हत्ता कि मुझे करार आ जाए। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा और फरमाया उम्मे हारसा क्या कहती हो। कहने लगी या रसूल्ला वही जो आप मुझसे सुन चुके हैं, अगर जन्नती है तो सबर करूंगी और शुक्र करूंगी, और जन्नती नहीं है तो रोऊंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी रहमत भरी नजरों से देखा, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए कैसे तड़प रही है फिर भी सबर कर रही है। वो अगर इसके सामने होता तो उसके गले लगाती, उसका मुंह चूमती, अपने से कभी जुदा ना होने देती। तो वो बेचैनी से खड़ी इंतजार कर रही कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस औरत का अपने बेटे से मोहब्बत और इस इनका सारी देखा, फरमाया उम्मे हारसा तुम्हें क्या हो गया है, बेटे की मोहब्बत में दीवानी हो गई हो, तुम एक जन्नत की बात करती हो, रब्बुल इज्जत ने उसको बहुत सारी जन्नतों का मालिक बना दिया है, खुश हो जा तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया है। तो जब बूढ़ी औरत ने ये खुशखबरी सुनी तो उनका सर झुक गया इज्जो इनका सारी से, चेहरे पे ताजगी आ गई, आंसू रुक गए, चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं शहीद की मां बन गई, मेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी मिल गई, मेरी खुशकिस्मती के क्या कहने, मुझे ना माले गनीमत चाहिए, ना दुनिया की कोई तारीफें चाहिए, ना कोई सिला चाहिए, यहां तो रब की रजा, उसकी खुशनुदी, उसकी चाहत और उसकी मोहब्बत है जो मुझे चाहिए सिर्फ। ये था उनका ईमान। ये आपको सारा सुनाने का मकसद ये कि ईमान कैसा था उनका। हम कभी सोचते ना अल्लाह ताला को ऐसा ईमान चाहिए, हर चीज कुर्बान करके भी क्या चाहिए, बस अल्लाह तेरी खुशनुदी चाहिए, तेरी चाहत चाहिए, तेरी मोहब्बत चाहिए, तेरी रजा चाहिए, और दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, कोई माल नहीं चाहिए, कोई तारीफें नहीं चाहिए, कोई सिला किसी से नहीं चाहिए। एक और औरत की बात बताती हूँ कि देखो उन लोगों के लिए आखरत कितनी बड़ी चीज थी। एक काली औरत थी, लौंडी थी, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिफा के लिए दुआ की दरख्वास्त की। कहने लगी मेरी जिंदगी अजीरन हो गई, बच्चे मुझसे डरते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मैं बाजार में हूँ या घर में लोगों के पास, अचानक मुझे दौरा पड़ जाता, मुझे होश ही नहीं रहता, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे शिफा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहो तो सबर कर लो और इसके बदले तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शिफा के लिए दुआ करूं। तो औरत ने सोचना शुरू कर दिया, अपने हालात पे, अपनी बीमारी को देखा, इतनी तंग आई हुई थी बीमारी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने दिल में दोहराया। अब वो दोनों में फैसला करना चाह रही थी किसको इख्तियार करे, सबर को या दुनियावी आराम को। सोचा, गौर किया कि दुनिया तो फानी है, इसने तो एक दिन खत्म हो ही जाना है, और मैं तो जन्नत क्यों ना अपने लिए मांग लूं, उसकी चाहत क्यों ना करूं। और फिर उसने अपना फैसला सुना दिया, अल्लाह के रसूल मैं सबर से काम लूंगी, बस आप मेरे लिए ये दुआ कर लें कि जब मुझे ये दौरा पड़े तो मैं बेपर्द हो जाती हूं, तो आप अल्लाह से दुआ करें मुझे बेपर्द ना करें। ये पता है बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत, उनके लिए क्या था, दुनिया उनको कैसी नजर आती थी और आखिरत कैसी नजर आती थी बताएं। वो जो जो ऐनक उन्होंने लगाई हुई थी ना, जो ग्लासेस उन्होंने लगाई हुई थी, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है जो हमने लगाई हुई। हमें दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है और आखिरत बहुत छोटी और दूर नजर आती है। उनको आखिरत बहुत करीब नजर आती थी और दुनिया बहुत छोटी और हकीर नजर आती थी। बहुत फर्क है हमारे देखने और उनके देखने में, और बहुत फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। जब सोच ही बदल गई तो अमल भी बदलेगा ना। इसीलिए इस छोटी सी और हकीर सी और थोड़ी सी दुनिया का कोई नफा, कोई नुकसान, कोई इज्जत, कोई जिल्लत उनके लिए कोई बिग डील नहीं थी। कोई कुर्बानी, कोई बिग डील नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनको मोहब्बतें नहीं थी? क्या उनके रिश्ते नहीं थे? क्या उनको आसाइशें नहीं चाहिए थी?